दिन भर 21 जुलाई दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। झारखंड के गुमला में चार आदिवासियों की पीट पीट कर हत्या, पुलिस को शक, घटना की वजह अंधविश्वास।
चारों लोग ऊंचा गुनी का काम किया करते थे, तो ऐसा संदेह जाहिर हो रहा है, इसी अंधविश्वास में इन लोगों की हत्या की गई है।
खास रिपोर्ट के असम में सिटीजन रजिस्टर की वजह से बढ़ रही है खुदकुशी करने वालों की संख्या।
मेरा छोटा भाई जो है ये किसी का पास शेयर नहीं करते, दिल में घूरते रहते, हमें तो इंतजार कर रहे हैं 31 जुलाई को आएंगे।
और डी राजा होंगे सीपीआई के महासचिव।
डी राजा संसद का अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उस पेज को टाइट करने का काम करेंगे।
शीला दीक्षित और एके राय को आखिरी विदाई भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। झारखंड के गुमला जिले में आज तड़के चार लोगों की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड का कारण अंधविश्वास हो सकता है। मारे गए लोगों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं और इनकी आयु 60 से 70 वर्ष के बीच है। एक मृतक के परिजन का कहना है कि करीब 20 से 25 लोग तड़के 3 बजे के करीब घर पर आए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में हुए गोलीकांड के पीड़ितों से आज मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटना एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश और गुंडागर्दी का उदाहरण है। उन्होंने इस घटना के मुख्य अभियुक्त का संबंध समाजवादी पार्टी से बताया। साथ ही उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए कहा कि ये कांग्रेस की नीतियों के कारण हुआ, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकारों के समय में आदिवासियों की जमीन ट्रस्ट को देने का नियम बना था। उन्होंने कहा,
मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार इसकी तह में जाएगी और उन सभी चेहरों को बेनकाब करेगी जो आज घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी पृष्ठभूमि उन लोगों ने रची थी। उन लोगों के समय में कब कब क्या घटनाएं घटित हुई थी, यह दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा।
ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि उनके देश और ब्रिटेन के बीच तनाव कम करने के लिए विवेक और दूरदर्शिता की जरूरत है। दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के तेल टैंकर कब्जे में लिए जाने के बाद काफी तनाव है। जरीफ ने ब्रिटेन को इस हालात में पहुंचाने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को जिम्मेदार ठहराया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हांगकांग में क्षेत्र की स्वायत्तता को लेकर फिर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 10,000 से अधिक लोग सड़कों पर हैं और बीते 2 महीनों से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें हांगकांग के केंद्रीय इलाके की ओर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो वहां जाएंगी। हालांकि अभी तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की कोई खबर नहीं है। हांगकांग में किसी आरोप के अभियुक्त को चीन में प्रत्यर्पित करने के कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे, लेकिन अब कई कार्यकर्ताओं का मानना है कि बड़े राजनीतिक बदलाव होने चाहिए। सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट के वाइस कन्वीनर बॉनी लियांग ने कहा,
Hong Kong people had been voicing out our 5 demands for so many times, including the march where
Hong Kong को लेकर हमारी 5 मांगों को बहुत ज़्यादा समय से उठाया जा रहा है। साथ ही 20 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरकर इन 5 मांगों को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि दुर्भाग्य से हांगकांग के गवर्नर कैरी लाम की सरकार अभी भी इन मांगों को लेकर कोई कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। ये थे सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट की वाइस कन्वीनर बॉनी लियांग के शब्द। जापान के सरकारी टीवी चैनल NHK ने एग्जिट पोल में कहा है कि रविवार को संसद के ऊपरी सदन के लिए आधी सीटों पर होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री शिंजो आबे का मध्य दक्षिणपंथी गठबंधन अपना बहुमत बरकरार रखेगा। सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी सहयोगी कोमेटो पार्टी 124 में से कम 67 सीटों पर जीतेगी। गठबंधन को अगर इस चुनाव में 85 सीटें मिल जाती हैं तो आबे जापान के संविधान को संशोधित कर सकेंगे। ब्रिटिश एयरवेज ने पुष्टि की है कि वो शुक्रवार से वापस लंदन और काहिरा के बीच उड़ान शुरू करेगा। शनिवार को विमानन कंपनी ने काहिरा के लिए उड़ानें रद्द कर दी थीं। ब्रिटिश एयरवेज के एक प्रतिनिधि ने बताया कि उड़ानों को सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया के तहत स्थगित किया गया था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि काहिरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा में कमी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिनभर की शुरुआत झारखंड की एक खबर से। झारखंड के गुमला जिले में आज 4 आदिवासियों की हत्या कर दी गई। रिपोर्टों के मुताबिक इन्हें भीड़ ने पहले पीटा और फिर गला रेत दिया। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह अंधविश्वास है। सुनिए रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
गुमला जिले के सिसई थाना इंचार्ज की नींद आज सुबह 4 बुजुर्गों की सामूहिक हत्या की खबर से खुली। इस थाने के सिसकारी गांव में लोगों के एक समूह ने एक दंपति समेत 4 लोगों की पहले पीट पीट कर और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। मारे गए लोगों में 2 महिलाएं हैं। इनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच थी। अपराधियों ने इनके घरों को खुलवाया, इन्हें जगाया और फिर गांव की अखड़ा के पास लाकर उनकी हत्या कर दी। यह घटना अल सुबह 3 बजे की बताई जा रही है। गुमला के SP अंजनी कुमार झा इसकी खबर मिलते ही घटनास्थल पर गए और लोगों से पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने BBC से कहा,
घटनास्थल पे गए थे सिसकारी गांव, आपको पता होगा वहाँ पे 4 लोगों का रात के टाइम में हत्या हुआ है। जो लोगों से पूछताछ वहाँ पे किया गया है, गुप्त रूप से भी खुले रूप से भी, तो ये चारों लोग ऊंचा गुनी का काम किया करते थे। तो गांव में अंधविश्वास में लोग किया करते हैं, तो ऐसा संदेह जाहिर हो रहा है और गुप्त रूप से हम लोगों को पता भी चल रहा है कि इसी अंधविश्वास में इन लोगों की हत्या की गई है।
तो मतलब आसपास के ही लोग होंगे अगर इस तरीके का मामला है।
हाँ, मतलब ऐसा ही लग रहा है, गांव वाले अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है।
इस घटना में मारे गए दंपति चापा उड़ाव और पीरा उड़ाइन की बेटी सिलवंती ने बताया कि हमलावरों ने दरवाजा खड़खड़ाकर खुलवाया, फिर मेरे माँ पिताजी को बाहर निकालकर दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। वे करीब 20-25 लोग थे और सबके हाथों में लाठियां थीं। सिलवंती ने कहा,
घुस रहा है, दूरा ठुका लाए, फिर दूरा खोला, फिर घर से निकला लाए, हमरे के दूरा बंद कर दिया।
एक और मृतका फग्नी उड़ाइन की बहू बुधनी ने कहा,
आए रहे से है मनोघर आए हमने बुढ़िया ही निकसाए उघरा लग दूरा निकस हार तो नहीं निकस रही के रहा से के तुम हो उतना नहीं जाना था।
इस बीच कुछ स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि 2-3 दिन पहले इस गांव में एक जन अदालत भी लगाई गई थी। इसमें 4 मृतकों पर डायन बिसाई करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण थी। हालांकि गांव के पूर्व मुखिया रवि उराव ने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ होता तो उन्हें इसकी जानकारी जरूर होती।
बूढ़ा बूढ़ी लोग का ही अथी हुआ है, इसलिए हमको लगता है कि अंधविश्वास है, झाड़ फूक के चलते इस तरह से हुआ है। तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, अभी तो उसमें कहा नहीं जा सकता है कि भाई क्या किया है क्या किया है। अभी तो जांच चल ही रहा है, हम भी तो तुरंत आए हैं, पता कर रहे हैं, तो हकीकत तो नहीं बता पाए।
बहरहाल यह मॉब लिंचिंग है या जन अदालत के बाद की गई हत्या, यह पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही पता चल सकेगा। रवि प्रकाश, BBC रांची।
झारखंड में इस तरह की हत्याओं का ये पहला मामला नहीं है। भीड़ पहले भी कानून अपने हाथ में लेती रही है। 3 दशक से ज्यादा वक्त से ऐसे मामलों को देखते रहे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार मधुकर से मैंने बात की और पूछा कि ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं।
देखिए, अंधविश्वास तो है, लेकिन अंधविश्वास में मूल रूप से यहाँ पर डाइन वाला जो अंधविश्वास है वो ज्यादा चलता है। यहाँ पर डाइन वाले अंधविश्वास में कभी यहाँ हिंदू मुसलमान करके और सिख क्रिस्तान करके कभी मॉब लिंचिंग की कोई घटना हमको याद नहीं है। मैं पिछले 35-40 साल से झारखंड में पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं है। डाइन वाले में होता था कि डाइन वाले मामले में लोग मॉब लिंच जाती थी और उनको मार डालती, तो वो एक अंधविश्वास का मामला जुड़ता है। लेकिन यहाँ दूसरे मामलों में जो है वो राजनीति जुड़ती है, जिस तरह की हम राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति का प्रतिफल है वो।
लेकिन आज का जो मामला है गुमला का, वो अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला है और इस तरह की घटनाएं भी लगातार सामने आती हैं, इन पर क्यों नहीं रोक लग पा रही है?
देखिए, यहाँ एक ताज्जुब की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से न्यायिक विधिक सेवा प्राधिकार बने, तो यहाँ पर झालसा देश के अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा एक्टिव है, एक्टिव दिखता है। लेकिन वो एक्टिविटी जिसके लिए PLV बहाल किए गए पैरालीगल वॉलंटियर, उनको जाना चाहिए, गांव-गांव लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए, वो बता समझा नहीं रहे। तो आज भी यह है कि कोई नया ये बड़ा सा पुल बना रहे हैं, तो उसमें किसी को मार करके डाल देना है, तो उससे जो है पुल रहेगा नहीं तो पुल ढह जाएगा और हमारी पूरी की पूरी संपत्ति खत्म हो जाएगी, पूरा पैसा हमारा ठेका का मिला हुआ खत्म हो जाएगा। लोगों को अवेयर करने के पीछे जो सरकार की मिशनरी को काम करना थी वो नहीं काम करी। NGO कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा ट्राइबल इलाका है, तो ट्राइबल इलाका अंधविश्वास से बहुत ज्यादा चलता है और कस्टमरीज को मान्यता है कानून से, उनको कस्टमरीज की मान्यता होने के कारण जो दूसरे लोग हैं उधर के बारे में बोलते नहीं, हिम्मत नहीं होती है उनकी, और वह उसका दुष्परिणाम दूसरे कम्युनिटी पर भी पड़ रहा है, उसी का परिणाम हमको लगता है प्रतिफल है ये आज की घटना।
जी, एक तरफ भारत चांद और मंगल पर पहुंच रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की घटना है, तो आप
इन दोनों को किस तरह से देख पाते हैं?
देखिए, चांद और मंगल पर पहुंचने का और चांद और मंगल पर पहुंचने के लिए जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, जो उनको तैयार करते हैं, वो अपने बच्चे को काला टीका लगाते हैं ताकि उनका नजर नहीं लगे किसी की। अब जहां इस तरह के लोग हैं वहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे चीजें बदलेंगी। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने तो अपना काम किया, अब भगवान के भरोसे है, भगवान देखिए भगवान क्या करता है। तो इस तरह का जब अंधविश्वास होगा तो ये अंधविश्वास तो गड़बड़ करेगा ना, इस तरह की चीजें तो घटना घटाएगी ना।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार मधुकर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के अगले महासचिव डी राजा होंगे, वो सुधाकर रेड्डी की जगह लेंगे। डी राजा के महासचिव बनने से सीपीआई में क्या बदलाव आएंगे? हमारे साथी संदीप राय ने यह सवाल किया प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष और सीपीआई के राजनीतिक विश्लेषक विनीत तिवारी से।
डी राजा का महासचिव चुने जाना ये प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि हर नया महासचिव आकर के अपनी तरफ से संगठन को मजबूत करने का काम करता है। डी राजा के मामले में एक विशेष बात यह है कि वो संसद का अच्छा ज्ञान रखते हैं। जो पार्लियामेंट के फ्रंट पर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के भीतर सीपीआई कहीं पिछड़ी है तो मुझे लगता है कि वो उस पेंच को टाइट करने का काम करेंगे, उस लूप होल को दुरुस्त करने का काम करने की कोशिश करेंगे। हम विधानसभाओं और लोकसभा और राज्यसभा के भीतर भी ज्यादा पकड़ हासिल कर सकें। मेरे ख्याल में डी राजा के महासचिव बनने से ये एक पॉजिटिव चीज हमें लगती है।
95 साल के कम्युनिस्ट पार्टियों के इतिहास में पहली दफे कोई ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसका महासचिव है वो एक दलित चुना जा रहा है, ये फैक्टर कितना काम आएगा?
ये फैक्टर कम्युनिस्ट पार्टियों के निर्माण या उनके विस्तार में काम आने लगा तो ये कम्युनिस्ट होने की निशानी कम हो जाएगी। मुझे तो पता भी नहीं है कि जब से जो कम्युनिस्ट लोग थे उनके सरनेम क्या थे और वो किस जाति के थे। इस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत सारे हैं, भूमैया किश्तागौड़, ये लोग भी दलित और आदिवासी थे। एक कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर डी राजा का महासचिव बनना ये उनके बेहतर कम्युनिस्ट होने की वजह से संभव हुआ है, ना कि उनके दलित होने की वजह से।
सीपीआई और सीपीएम के बीच में मर्जर को लेकर के काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। डी राजा के आने से क्या ये प्रक्रिया में बदलाव आएगा? क्या प्रक्रिया तेज होगी, धीमी होगी, आपको क्या लगता है?
डी राजा के आने से ये प्रक्रिया तेज या धीमी होना थोड़ा मुश्किल है। ये उन पर इतना निर्भर नहीं करता है जितना सीपीएम की इच्छा पर निर्भर करता है। सुधाकर रेड्डी भी पूरी शिद्दत के साथ में लगे हुए थे इस मसले पर, वर्धन ने भी अनेक दफा इसकी कोशिश की और कई मीटिंग हुई और अभी सुधाकर रेड्डी और डी राजा दोनों जाकर के सीताराम येचुरी के साथ में मुलाकात की, मिले उनसे। लेकिन अब सीपीएम के भीतर और उनके संगठन की जो निर्णय लेने वाली जो इकाइयां हैं उनके ऊपर ये ज्यादा निर्भर करता है कि ये यूनिफिकेशन, हम इसको मर्जर नहीं कहेंगे, कि हम किस तरह से उसको देखते हैं आगे कि कैसे एकीकृत वाम आंदोलन की एक इंटीग्रेटिव मूवमेंट की गुंजाइश बनती है।
ये थे विनीत तिवारी और उनसे बात कर रहे थे संदीप राय।
दिन भर शॉर्ट वेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित को आज अंतिम विदाई दी गई। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ हुआ। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत कई दलों के नेता पहुंचे। सुनिए गुरप्रीत सैनी की रिपोर्ट।
शीला दीक्षित की शव यात्रा निगम बोध घाट की तरफ बढ़ रही थी तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अंतिम दर्शन के लिए आए समर्थकों ने कहा कि शीला दीक्षित को विदाई देते हुए आसमान भी रो पड़ा है। इसके पहले उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस और दिल्ली शीला दीक्षित को कभी भुला नहीं सकेगी। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित का कल निधन हो गया था। वो 81 साल की थी। शीला दीक्षित 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रही थी। वो कुछ वक्त के लिए केरल की राज्यपाल भी रही थी। फिलहाल उनके पास कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने जो काम कराए उसकी कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं ने भी सराहना की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा,
विकसित दिल्ली की निर्माता और उसे विश्व स्तरीय राजधानी बनाने वाली, सजाने संवारने वाली, आज हम सबको छोड़कर विदा लेकर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गई।
वहीं केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा,
आज उनका निधन निश्चित तौर से जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है जो कि अपूर्णीय क्षति है।
शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी उन्हें याद करते हुए उनके विकास कार्यों की ही चर्चा की।
दिल्ली की हर सड़क पर शीला जी दिखी, कहीं उनका बनाया हुआ अस्पताल दिखा तो कहीं कोई जंगल दिखा जो उन्होंने बनाया था, तो कोई कहीं सड़क दिखी जो उनके नाम की थी। और इससे बड़ा मैं क्या आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं उस शहर में जा रहता हूं, वहां जहां जाऊं मुझे अपनी मां दिखेगी।
शीला दीक्षित को अंतिम विदाई देने गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा सैकड़ों की संख्या में आम लोग भी दिल्ली के निगम बोध घाट पहुंचे। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
पूर्व सांसद और कम्युनिस्ट नेता एके राय का निधन हो गया है। वो 84 वर्ष के थे। 3 बार सांसद रहे राय, ताउम्र मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष को बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने करीब से देखा था। मैंने कुछ वक्त पहले सलमान रावी से बात की।
देखिए, मैं तो उनको याद करता हूँ कि एक वो इंसान जिसने केमिस्ट्री में बीएससी ऑनर्स किया हो, जिसने केमिकल इंजीनियरिंग में एमएससी तक किया हो और उसके बाद जो है पीडीआईएल सिंदरी जो है वहाँ नौकरी करता हो और अचानक मजदूरों के सवालों के लिए वो सड़क पर उतरता है और उसके बाद वो इंसान जेल चला जाता है संघर्ष करते हुए, और 3-3 बार विधायक रहकर, 3-3 बार सांसद रहकर एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन के रूप में एक राय को जाना जाता है जिन्होंने अपने जो उनको पेंशन मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वो आज तक नहीं ली, और रहने का उनका बिल्कुल झोपड़ी नुमा उनका ऑफिस और जमीन पर चटाई बिछाकर सोया करते थे। ये उनसे जब मेरी मुलाकात होती रही, ये बहुत पहले की बात है, 88-89 कोयला नगरी है धनबाद, वहाँ अलग अलग मुद्दे हैं मजदूरों के, कहीं पर सूदखोरों का आतंक, राष्ट्रीयकरण तो बहुत बाद में हुआ कोयले की खदानों का, लेकिन उससे पहले प्राइवेट कोलियरी ओनर्स थे और वो किस तरह से शोषण किया करते थे मजदूरों का, उनकी बीवियों का, उनकी बेटियों का, उनके परिवारों का। तो ये एक राय एक बहुत बड़ी एक फोर्स के रूप में इन्होंने तैयार किया लोगों को ताकि इनका सामना किया जा सके, और हमेशा से ये माफिया के निशाने पर रहे।
जी, ये माफिया के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन एक अंदरूनी लड़ाई इनकी उन दलों से भी रही जहाँ ये काम करते रहे, खासतौर पर वामपंथी दल इन्हें कभी अपना नहीं सके।
जी बिल्कुल, 1977 में वो जेल में रहकर चुनाव जीते, 1980 में जीते, लेकिन क्या है कि 1967 में सीपीएम के एमएलए भी रहे, फिर 69 में रहे, लेकिन 71 में सीपीएम ने उनको निकाल दिया। शायद उनकी जो नीतियां हैं वो पार्टी की नीतियों से मैच नहीं करती थी। उन्होंने किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था लालखंड झारखंड, यानी लालखंड का मतलब आप समझना है ये जो नक्सली मूवमेंट था, ये लालखंड का इलाका वो था जहां बंधुआ मजदूरी का आंदोलन चल रहा था, जहां निजी सेनाएं थी लैंडलॉर्ड्स की जो बंधुआ मजदूरी करवाती थी उन्हीं लोगों से जिनकी जमीन है। तो एके राय ने ये किताबें लिखी और बहुत कम लोगों को ये पता है, पुराने लोग शायद जानते हैं कि एके राय ही वो इंसान थे जिन्होंने शिवू सोरेन को गांव से ढूंढ कर निकाला और एक पॉलिटिकल थॉट देकर उनको एक तैयार किया, और झारखंड का जो ये अलग राज्य का जो संघर्ष है उसके ये जन्मदाता रहे। और गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने फिल्म देखी होगी, ये तो बहुत बात की फिल्म है, ये उससे पहले एके राय का जो संघर्ष माफियाओं के जो हिटलिस्ट में थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि लोग बोलते थे, सूर्यदेव सिंह थे जो माफिया डॉन, उनको ये कहते थे कि भाई एके राय को मारने में आपको कितना टाइम लगेगा, वो बोले नहीं 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 एके राय को मारेंगे नहीं, मारेंगे तो वो हीरो बन जाएगा और बहुत पॉपुलैरिटी हो जाएगी। जहां तक बात माफियाओं का है तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं उनकी सिंपलिसिटी का, कि एक बार ऐसा वाकया हुआ कि ये 2003 की बात है कि मैं उनका इंटरव्यू करने के लिए उनके झोपड़ी नुमा उस ऑफिस में था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत गंदा है मैं साफ करता हूँ, तो वो झाड़ू से बनियान पहने हुए, पजामा पहने हुए फटा हुआ, और वो झाड़ू दे रहे थे। तब तक एक युवक आता है और वो पूछता है कि एके राय कौन है, तो बताया कि भाई यही एके राय है। फिर वो युवक वापस चला जाता है आनंद फानंद में, बोले ये एके राय है, बोले हाँ ये एके राय है। कई दिनों के बाद वो युवक पकड़ा जाता है और धनबाद पुलिस के इंस्पेक्टर थे उस टाइम में अवधेश कुमार सिंह, तो इंटरोगेशन में वो ये कहता है कि उसने एके राय को मारने के लिए सुपारी ली थी जो उसने लौटा दी, सिर्फ वो सादगी देखकर उस इंसान, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस कद के नेता थे।
ये थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान और ब्रिटेन के बीच बना तनाव शुक्रवार को एक टैंकर जब्त किए जाने के बाद से बढ़ गया है। अब एक रेडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है, ये रिकॉर्डिंग ब्रिटेन के जंगी जहाज और ईरान के सुरक्षा गार्डों के बीच हुई बातचीत की है। ये बातचीत ईरान की ओर से ब्रिटेन के तेल टैंकर को जब्त किए जाने के ठीक पहले की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद शाहिद।
शुक्रवार को होर्मुज की खाड़ी की तरफ बढ़ते ब्रिटेन के तेल टैंकर स्टेना इंपेरो को ईरान के गार्डों ने कुछ इस तरह निर्देश दिया।
You are ordered change your course to 360.
आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपना रास्ता बदलें 360 डिग्री पर तुरंत रास्ता बदलें। आप आदेश मानेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ईरान ने शुक्रवार को ही इस तेल टैंकर को जब्त कर लिया था। इसके बाद से ईरान और ब्रिटेन के बीच तनाव बढ़ गया है। बातचीत का ये टेप ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म ड्रायर ग्लोबल के पास है और अब सामने आया है। इस रिकॉर्डिंग में ईरान के सुरक्षा बलों को ये कहते सुना जा सकता है कि वो सुरक्षा कारणों से तेल टैंकर स्टेना इंपेरो की जाँच करना चाहते हैं। वहीं ब्रिटेन के जंगी जहाज ने स्टेना इंपेरो से कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय खाड़ी से गुजर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक आपका रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। तेल टैंकर जब्त किए जाने के मामले में ब्रिटेन के चांसलर फिलिप हैमंड ने कहा है कि ब्रिटेन की सरकार ईरान की कार्रवाई के जवाब में हर संभव कूटनीतिक रास्ता आजमाएगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने ईरान से तेल टैंकर छोड़ने को कहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के अगले कदम को लेकर सोमवार को सांसदों को जानकारी दी जाएगी। वहीं लंदन में ईरान के राजदूत हामिद बाईदी निजाद ने ब्रिटेन को तनाव न बढ़ाने की चेतावनी दी है। उधर ईरान का दावा है कि ब्रिटेन का तेल टैंकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ओर से ईरान की समाचार एजेंसी फार्स ने एक वीडियो भी जारी किया था। इसमें दिखाई दे रहा था कि नौकाओं ने टैंकर को घेरा हुआ है और हेलीकॉप्टर के जरिए चेहरे ढके गार्ड जहाज पर उतर रहे हैं। स्टेना इंपेरो को जब्त किए जाने के 2 हफ्ते पहले ब्रिटेन ने जिब्राल्टर में ग्रेस वन नाम के ईरानी टैंकर को जब्त कर लिया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर फवाज जर्जेस कहते हैं कि ईरान ने अपना टैंकर जब्त किए जाने के जवाब में ये कार्रवाई की है।
The Iranians would like Grace One back. It has 2.1 million barrels of oil on it.
ईरान ग्रेस वन को वापस चाहता है। इसमें 21 लाख बैरल तेल है। ब्रिटेन भी अपना टैंकर वापस चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ बड़ी दुविधा की स्थिति है। ब्रिटेन का कहना है कि देखिए, हमने ईरान के जहाज को कानूनी तौर पर पकड़ा है क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध के खिलाफ सीरिया जा रहा था, जबकि ब्रिटेन के जहाज को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ पकड़ा गया है। ये थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर फवाज जर्जेस के शब्द। ईरान के अमेरिका और ब्रिटेन के साथ रिश्तों में खटास आई है। अप्रैल से अमेरिका और ईरान के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका मई से ईरान पर टैंकरों पर हमला करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन ईरान इससे इनकार करता रहा है।
रिपोर्ट सुना रहे थे मोहम्मद शाहिद। और अब एक खास रिपोर्ट। असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी NRC की अंतिम लिस्ट के प्रकाशन से पहले लगातार तनाव बना हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या इसी तनाव के कारण यहाँ लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस मुद्दे की पड़ताल कर रही BBC संवाददाता प्रियंका दुबे की ग्राउंड रिपोर्ट सुनिए।
असम के बोंगई गांव जिले के डोमेरगुरी गांव में रहने वाले अब्दुल खालिक के परिवार का दुख जैसे सतत बारिश में घुलकर पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी में बिखर गया है। 4 जुलाई की रात अब्दुल के छोटे भाई जैनल अली ने अपने घर के पीछे मौजूद एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। परिवार उनकी मौत के लिए नेशनल सिटीजन रजिस्टर या NRC से जुड़े तनाव को दोषी मानता है। कथित तौर पर इसी तनाव के कारण यहाँ बीते 2 हफ्तों में 6 लोग अपनी जान ले चुके हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी के सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाले मृतक के परिवार तक पहुंचने के लिए दिल्ली से 1800 किलोमीटर की यात्रा के बाद आई नदी पार करके आधे घंटे का दलदल भरा कच्चा रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। यहां रहने वाले जैनल की 40 वर्षीय पत्नी महेला खातून की जिंदगी के जैसे सारे सिरे उलझ गए हैं। बीते साल जारी हुई NRC लिस्ट में जैनल का नाम नहीं आया था। पत्नी के अनुसार उन्होंने नागरिकता के लिए क्लेम फॉर्म तो भरा, लेकिन उसे लेकर उनकी चिंता कम नहीं हुई।
अगर दिन के एक दिन मनुष्य ने साल
पास के ही किसी दलाल ने उनसे कहा था कि पैसे देने पर वो लिस्ट में नाम शामिल करवा देगा। मेरे पति ने उसे थोड़े पैसे दिए भी थे, लेकिन वो और पैसे मांग रहा था। आत्महत्या की रात उन्होंने बताया था कि वो बहुत परेशान हैं। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उन्हें कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ये सुनकर मैं डर गई। अगली सुबह जब अजान के वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला था और वो कहीं नहीं थे। कुछ देर बाद पता चला कि उन्होंने पीछे खेत में ही खुद को फांसी लगा ली है।
आत्महत्या से ठीक एक रात पहले जैनल ने बड़े भाई अब्दुल खालिक से भी एनआरसी लिस्ट के बारे में फोन पर बात की थी, लेकिन वो जैनल के भीतर पल रहे तनाव की गंभीरता को भांप नहीं सके।
मेरा छोटा भाई जो है ये किसी का पास शेयर नहीं करते, दिल में घुरते रहते। हमें तो इंतजार कर रहे हैं 31 जुलाई को आएंगे, लेकिन डर कुछ नहीं मेरा। कौन खत भगाएंगे यहाँ से, हमें जहाँ भी जाने में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो दिल्ली में, वहाँ भी जाऊँगा, हम कागज दिखाऊंगा उसको, दिखा दूंगा हमें जो हम आसाम का आदमी है, आसाम का लीगल इंसान हो हम।
उधर दरांग जिले के खरपेटिया मोहल्ले में रहने वाली 32 वर्षीय निरुपमा दास अपने पिता निरोध बरन दास का जिक्र आते ही रो देती हैं। शिक्षक और वकील के तौर पर बीते 4 दशकों से खरपेटिया में काम कर रहे 68 वर्षीय निरोध बरन के नाम के आगे एनआरसी लिस्ट में डाउटफुल वोटर लिखा था। परिवार के अनुसार निरोध बरन ने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर लगे एक दाग की तरह लिया और बीते अक्टूबर अपने घर की बैठक में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
सरकार को किसी को भी नोटिस भेजने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, क्योंकि एनआरसी के एक नोटिस से इंसान की जिंदगी के धागे तितर बितर हो जाते हैं। वे एक खुश मिजाज आदमी थे, लेकिन सेकंड लिस्ट में उनका नाम आने के बाद से उनके चेहरे की हंसी चली गई।
इस बारे में सरकार का पक्ष जानने के लिए बीबीसी ने हर संबंधित जिले के उच्चतम पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन सभी ने बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि नाम प्रसारित ना करने की शर्त पर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने एनआरसी की वजह से हो रही आत्महत्याओं को नकारते हुए कहा कि ये आत्महत्याएं निजी कारणों से हो रही हैं। लेकिन पीड़ित परिवारों के साथ काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता शाहजहां प्रशासन की इसी उदासीनता को असम में बढ़ रही आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं।
हमारा मन है जो अनेक लोग सुसाइड कर गए, कारण
जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है उनकी टेंशन बहुत बढ़ गई है। इसके बाद फॉरेन ट्राइब्यूनल में खुद को नागरिक साबित करने के लिए बहुत से कागजात और वकील के लिए पैसा चाहिए। जिनके पास इतने साधन नहीं है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन की उदासीनता की वजह से स्थिति और खराब हो रही है।
मानव अधिकार पर काम कर रही सामाजिक संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार असम में अभी तक 50 से ज्यादा लोग नागरिकता से जुड़े तनावों की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। 31 जुलाई को एनआरसी की फाइनल लिस्ट प्रकाशित होने के बाद यहां हालात और भी नाजुक हो जाने की संभावना है। प्रियंका दुबे, पीबीसी असम।
इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर बताएं। और अब आदेश कुमार गुप्त से खेल का अपडेट। जी आदेश जी।
जी वात्सल्य, आज सबकी नज़र इस पर थी कि जो भारतीय क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ का दौरा करेगी, जहां वो 2 टेस्ट मैच, 3 T20 और 3 एक दिवसीय मुकाबले खेलेगी, उनमें आखिर क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम अपने सुनने वालों को बता दें कि भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से 21-15, 21-16 से हार कर बाहर हो गई। तो वात्सल्य जी, आपकी नज़र तो खुद खेलों पर रहती है। देखिए, टेस्ट टीम में रोहित शर्मा की वापसी हुई, लेकिन आप देखिए कि शिखर धवन को खामियाजा भुगतना पड़ा आउट ऑफ फॉर्म होने का।
लेकिन वनडे टीम में और T20 टीम में लौट आए हैं।
जी हाँ, लेकिन उनकी पहचान एक बहुत अच्छे टेस्ट क्रिकेटर दौर पे थी। और वेस्ट इंडीज ए का जो दौरा कर रहे थे वो खिलाड़ियों के लिए ये सोने पे सुहागा साबित हुआ, क्योंकि आप देखिए खलील अहमद, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर और इसके अलावा चहरवंतु दीपक और राहुल चहर टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। और कप्तान कोहली तीनों फॉर्मेट में हैं, तो इससे एक फायदा हुआ कि धोनी भले ही मौजूद नहीं है लेकिन सीरीज में दमखम बना रहेगा।
बहुत शुक्रिया आदेश जी। और अब चलते चलते मुख्य समाचार गुरप्रीत सैनी से।
बीबीसी समाचार। झारखंड के गुमला जिले में आज तड़के 4 लोगों की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड का कारण अंधविश्वास हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में हुए गोलीकांड के पीड़ितों से आज मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटना एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश और गुंडागर्दी का उदाहरण है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश और ब्रिटेन के बीच तनाव कम करने के लिए विवेक और दूरदर्शिता की ज़रूरत है। दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के तेल टैंकर कब्जे में लिए जाने के बाद काफ़ी तनाव है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी राजेश चौहान के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के तमाम अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।